समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है या है जयंत दिवस। तो श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनीता आनंद। अनीता, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। For all of you, we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. All this over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
जी बिल्कुल। राष्ट्र आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड की सलामी ली।
Indonesian President Prabowo Subianto attended the parade as the chief guest at this year's Republic Day celebrations.
गणतंत्र दिवस परेड में स्वर्ण भारत विरासत और विकास विषय पर आधारित 31 झांकियां प्रदर्शित की गईं।
139 distinguished personalities selected for this year's Padma Awards, M.T. Vasudevan Nair, Justice J.S. Kehar, Pankaj Udas, Vivek Debroy and Osamu Suzuki prominent among them.
सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अधिसूचित।
And in athletics, India's Jyoti Araji wins gold medal in women's 60-meter indoor hurdles in France, breaking her own national record. And time now for our segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we'll talk about Republic Day celebrations and Narendra Modi app in Mahakumbh. The nation is celebrating the 76th Republic Day today. President Draupadi Murmu led the nation in celebrating the Republic Day from Kartavya Path in New Delhi.
Jayati Jaya Jaya Mama Bharatam Mama Bharatam.
The ceremony commenced with a visit of Prime Minister Narendra Modi to the National War Memorial, where he paid tributes to the fallen heroes by laying a wreath.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो के साथ बग्घी पर सवार होकर कर्तव्य पथ पर पहुंची। राष्ट्रपति ने राष्ट्रध्वज फहराया और उसके बाद 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान गाया गया।
The parade was heralded by 300 cultural artists playing Sare Jahan Se Achha with musical instruments of different parts of the country. Showering of flower petals was carried out by Mi-17 four helicopters from 129 helicopter unit in the Dhwaj formation. Tank T-90 Bhishma Nag missile system along with BMP-2 Sharat Brahmos Pinak multi-launcher rocket system, Agnibaan multi-barrel rocket launcher, Akash weapon system, integrated battlefield surveillance system, all-terrain vehicle Chetak and light specialist vehicle Bajrang were on display at the Kartavya Path.
परेड में इंडोनेशिया के 160 सदस्यीय मार्चिंग दस्ते और 190 सदस्यीय बैंड दस्ते ने हिस्सा लिया। परेड में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों की 31 झांकियां प्रदर्शित की गईं। इसका विषय स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था। पहली बार एकीकरण की भावना प्रदर्शित करते हुए कर्तव्य पथ पर सेना के तीनों अंगों की झांकियों ने भाग लिया। हरियाणा की झांकी में भगवत गीता को दर्शाया गया और उत्तर प्रदेश की झांकी में चल रहे महाकुंभ 2025 को प्रदर्शित किया गया.
The event concluded with a flypast of 47 aircraft. The flypast witnessed a breathtaking air show by Rafael, Su-30 Jaguar C-130, Dornier 228 and AN-32 aircraft, and Apache and Mi-17 helicopters.
राष्ट्र और समाज निर्माण में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए इस कार्यक्रम को देखने के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से विशिष्ट अतिथियों को सरकार के विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया. ग्राम सभाओं के सरपंचों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों, स्व सहायता समूहों के सदस्यों, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सड़क निर्माण श्रमिकों सहित 34 श्रेणियों में 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया था.
And now our next subject of Dateline is Narendra Modi app in Mahakumbh.
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आज 14वां दिन है. श्रद्धालु सभी अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद मेला क्षेत्र में आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों और पंडालों का दौरा कर रहे हैं. इनमें नरेंद्र मोदी ऐप मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
The ongoing Mahakumbh enters its 14th day today. The devotees, after performing the rituals, also visiting several exhibitions and pavilions set up in the Mela area. One of them is Narendra Modi app, which has become a center of attraction. A report.
इस प्रदर्शनी में नरेंद्र मोदी ऐप की विभिन्न विशेषताओं और इसे डाउनलोड करने के तरीके के संबंध में जानकारी दी गई है. नरेंद्र मोदी ऐप प्रधानमंत्री का आधिकारिक ऐप है जो लोगों को सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनके यादगार पलों पर आधारित चित्रों की एक फोटो गैलरी लगाई गई है. आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए नरेंद्र मोदी ऐप प्रदर्शनी के प्रभारी पुंडरिक मिश्रा ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से आगंतुक विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ले सकते हैं.
ऐप का कैंप सेक्टर 1 त्रिवेणी रोड उत्तरी पटरी पर लगा हुआ है. इस कैंप में माननीय प्रधानमंत्री जी के ऐप से संबंधित सारी जानकारियां, उनके द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं उनकी जानकारियां, उनके जीवन में हुए विभिन्न प्रमुख कार्यों से संबंधित एक प्रदर्शनी और उनसे प्रश्न पूछने पर उनके द्वारा दिए जाने वाले जवाब का एक सेक्शन है. यहां पर आप माननीय प्रधानमंत्री जी को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, उनको कुछ सुझाव दे सकते हैं और साथ में आप एक सेक्शन है जहां पर कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर फोटो ले सकते हैं.
राजस्थान के कोटा की रहने वाली एक आगंतुक स्वीटी राठौर ने इस प्रदर्शनी के बारे में अपना अनुभव साझा किया.
पे नमो मोदी ऐप का जो ये लगा हुआ है, यहां पे सेल्फी पॉइंट भी है और बहुत जानकारी भी है मोदी जी के बारे में. उनकी सारी प्रदर्शनी लगी हुई है, उन्होंने कब क्या किया, कैसे किया, ये बहुत अच्छा लगा, जानकारी मिली. यहां पे सेल्फी पॉइंट में हमने सेल्फी ली.
इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ फोटो लेने के लिए बनाया गया सेल्फी पॉइंट श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज.
और परिक्रमा कार्यक्रम में अब समय हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. तो इस क्रम में सबसे पहले चलते हैं असम.
वाइल बराक वैली ऑफ साउथ ऑफ असम सेलिब्रेट्स द 76th रिपब्लिक डे, मार्टर्स ऑफ द फर्स्ट नेशनल स्ट्रगल फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया आर ऑल्सो रिमेम्बर्ड देयर. मूव फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट.
On this Republic Day, people of the Barak Valley remember the Indian sepoys who had sacrificed their lives at Malegar, Binnakandi and other places of Barak Valley during the first national struggle for free India, which is known as the Sepoy Mutiny of 1857. In November 1857, 300 soldiers of three companies of the 34th Native Infantry joined the Sepoy Mutiny at Chittagong. After breaking open the jail and confiscating the British treasury, they marched towards Kumilla, then Tripura, and finally reached the southeast of the Sylhet, which is present-day districts of Karimganj, Sribhumi, Kachar, and Hailakandi. They wanted to go to Manipur. Major Bayang, the commandant of the Sylhet Light Infantry, confronted them with 160 men at Latu. The 200 rebels tried to win over the Indian soldiers under Major Bayang, but the British started firing and at least 26 of them were killed. Major Bayang and five other soldiers were also killed in the fight, after which the sepoys left Latu and the British force also retreated from there. Thereafter, they entered Kachar and Hailagandhi districts, where also attacked by another detachment of Silhet Light Infantry under Lieutenant Rose. These sepoys and Narendrajit Singh, a Manipuri prince, continued fighting the colonial company till January last week of 1858, till their capture or death. Various places of Barak Valley are marked by the legacy of their martyrdom. The months of December and January till the Republic Day is the time for remembering those unnamed fallen heroes for the people of Barak Valley. Shashwati Bhattacharji, Akashvani, Silchar.
और उधर केरल में भी गणतंत्र दिवस आज बड़े ही धूमधाम से मनाया गया।
The celebrations were held in all its grandeur and festivities across the state. Details from our correspondent Mayusha.
Governor Rajendra Vishwanath Arlekar hoisted the national flag at the Central Stadium in Thiruvananthapuram. The governor said that Kerala is at the forefront in the country's journey towards a developed nation by 2047. Chief Minister Pinarayi Vijayan attended the ceremony and highlighted the importance of upholding democratic values and constitutional principles. Meanwhile, Republic Day was widely celebrated across all islands in Lakshadweep. At the official ceremony held at Kavarathi, the capital city, advisor to the administrator Sandeep Kumar hoisted the national flag and took the salute of the parade. Mayusha for Akashvani News from Thiruvananthapuram.
And now we go over to Haryana.
बिल्कुल हरियाणा में किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके साथ ही कई प्रगतिशील किसान भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं. तो सुनते हैं अश्विनी कुमार की रिपोर्ट.
हरियाणा में किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके साथ ही कई प्रगतिशील किसान भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, जो अपने साथी किसानों को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर खेती के लिए प्रेरित करते हैं. जिला अंबाला के गांव चुड़ियाली निवासी लालचंद भारद्वाज ऐसे ही प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने शिक्षा विभाग से लेक्चरर के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद न केवल प्राकृतिक खेती की बल्कि अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित किया. लालचंद भारद्वाज ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि वे लगभग 2 एकड़ भूमि में गन्ने और गेहूं की कुदरती ढंग से खेती करते हैं. वे गाय के गोबर की खाद व गोमूत्र से कीटनाशक बनाकर खेती में प्रयोग करते हैं. किसी भी तरह के रसायन का प्रयोग नहीं करते. इसके अलावा वे श्री अन्न की खेती भी करते हैं. लाचन ने बताया कि वे बिना मसाले का गुड़ बनाकर बेचते हैं और उनकी देसी गेहूं भी काफी मांग में रहती है, जो 5500 रुपए क्विंटल के भाव पर बिक जाती है. लोग अग्रिम ही पैसे का भुगतान कर जाते हैं, जिससे उनकी आमदनी में काफी वृद्धि हुई है. जहां तक मोटे अनाज का संबंध है, तो उन्होंने अंबाला छावनी में एक आउटलेट खोला हुआ है. यहां से पूरे भारत में वे श्री अन्न बेचते हैं. उन्होंने बताया कि श्री अन्न को लेकर उनके यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स हैं. उनके उगाए श्री अन्न की मांग भी बनी रहती है. परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा.
एंड फ्रॉम हरियाणा वी गो ओवर टू बिहार. मुकेश.
बिल्कुल, बिहार से 7 विभूतियों को इस बार सरकार ने पद्म सम्मान प्रदान करने की घोषणा की है. कला संस्कृति, समाज सेवा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को ये सम्मान प्रदान किया जाएगा. तो सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट.
बिहार से 5 पद्मश्री सम्मान, 1 पद्म भूषण और 1 पद्म विभूषण अलंकरण के लिए महत्वपूर्ण शख्सियतों को चुना गया है. महान लोक गायिका और स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण के लिए चुना गया है, जो भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश का नागरिक सम्मान है. अपनी मधुर गीतों के चलते शारदा सिन्हा आने वाली कई सदियों तक लोगों के दिल में बसी रहेंगी. लंबी बीमारी के बाद हाल ही में उनका निधन हो गया था. राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत पद्म भूषण और भारतीय पुलिस सेवा छोड़कर परामर्श कार्य के क्षेत्र में आए आचार्य किशोर कुणाल को मरणोपरांत पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है. दादी माँ और नानी माँ की पीढ़ियों से चली आ रही सूजनी कला की जाने मानी कलाकार मुजफ्फरपुर निवासी निर्मला देवी ने पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने जाने पर हर्ष जताया है. आकाशवाणी समाचार से बातचीत में निर्मला देवी ने कहा कि यह सम्मान उन महिला कलाकारों को समर्पित है, जो दिन रात सुजनी की कला को आगे बढ़ाने में लगी हैं.
महिला आर्टिजन के बदौलत हमको ये मिला है, समाज के बदौलत हमको मिला है। जो कलाकार हमसे जुड़े हुए हैं वो अच्छा आमदनी पा रहे हैं। हम तीन महिला से काम शुरू किए थे, आज हमारे साथ 750 महिला को हम ट्रेनिंग दे चुके। बहुत बड़ा पहचान हमको सुदनी ने दिया। आज ना बहुत पहले से हमको बहुत आबाद मिला हुआ है, लेकिन यही पद्मश्री हमको नहीं मिला था।
तीन अन्य विभूतियों भोजपुर के समाज सेवी भीम सिंह भवेश और पटना के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर हेमंत कुमार भी इस सम्मान के लिए चुने गए हैं। वहीं जमुई के लछुआर से जुड़े जैन धर्म के विजय नित्यानंद सुरेश्वर महाराज को उनके परमार्थ कार्यों के लिए पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिक्रमा मुकेश कुमार और अनीता आनंद के साथ। और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं खेल जगत की हलचल। तो सबसे पहले किसकी जानकारी देंगे अनीता?
ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस की टॉप सीडेड जो टेलर टाउनसन ऑफ यूएस एंड चेक प्लेयर कैटरीना सिनियाकोवा क्लिंच द वुमेन्स डबल्स टाइटल एट मेलबर्न पार्क्स आइकॉनिक रॉड लेवर अरेना टुडे। दे डिफीटेड थर्ड सीड पेयर ऑफ लाटवियाज येलेना ओस्टापेंको एंड Xie Suwei of Taiwan by 6-2, 6-7, 6-3. On the other hand, in the men's singles final, Italy's Yannick Sinner will face Germany's Alexander Zverev this afternoon.
और बात करते हैं शतरंज की, तो 87वें टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में 8वां राउंड आज शाम 6:30 बजे नीदरलैंड के विस्गोन जी में शुरू होगा। इस राउंड में 8वें राउंड में आर प्रज्ञानानंद सफेद मोहरों के साथ खेलते हुए अपने ही देश के डी कुकेश से भिड़ेंगे, जबकि दूसरे नोडरबेक अब्दुसतेव सफेद मोहरों के साथ फेडोसेव का सामना करेंगे। चैलेंजर सेक्शन में भारत की दिव्या देशमुख सफेद मोहरों के साथ कजाकिस्तान की खिलाड़ी काजीबेक नॉर्बेक के साथ खेलेंगे। इससे पहले 7वें राउंड में डी गुकेश ने भारत के ही पेंटला हरिकृष्णा को हराया। गुकेश अब मास्टर्स में आर प्रज्ञानानंद और नोडिर अब्दुर सत्तारब के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं।
In athletics, India's Jyoti Araji broke her own national record and won the gold medal in the women's 60 meters indoor hurdles at the meeting de Nanto Metropole 2025 in France yesterday. Jyoti Araji, who already holds the national record in women's 100 meter hurdles, clocked 8.04 seconds to win the final A at the Pierre Quinault Metropolitan Stadium.
और बात करते हैं फुटबॉल की, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज शाम 7:30 बजे मुंबई में मोहम्मदन एससी का मुकाबला मुंबई सिटी से होगा। मुंबई सिटी की टीम इस मैच को जीतकर शीर्ष 6 में स्थान बनाने की कोशिश करेगी। प्रतियोगिता के 16 मुकाबलों से केवल 11 अंक प्राप्त कर मोहम्मदन एससी की टीम तालिका में सबसे नीचे है। प्रतियोगिता में कल गोवा ने चेन्नई को हराया था।
And now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On 26 January 1950, India became a republic. While India had been running its own affairs since the actual transfer of power from British to Indian hands on 15 August 1947, 26 January 1950 marked the severing of our last ties with Britain. The Indian National Congress, in the annual session of 1929 in Lahore, had passed the historic Purna Swaraj resolution, making a public declaration to celebrate 26 January 1930 as Independence Day. Thus, to commemorate that Purna Swaraj resolution, the date of 26 January was chosen to implement the constitution.
India's first president, Dr. Rajendra Prasad, was sworn in as India's head of state, replacing the king. And the Constitution of India was ratified. With the 1950 Constitution, the country was officially known as the Republic of India, a sovereign, socialist, secular, democratic republic that secures all its citizens justice, liberty, equality, and fraternity according to its preamble. The Constitution gave India's citizens the power to govern themselves by choosing their own government.
In 1950, the day began in Delhi with the 34th and the last Governor General of India, Chakravarti Rajagopalachari, reading out a proclamation announcing the birth of the Republic of India. Indonesia's President Sukarno was the chief guest on the occasion. Dr. Rajendra Prasad took oath as India's first president at the Darbar Hall in the Government House. The president then addressed the crowd first in Hindi and then in English.
Today, for the first time in our long and checkered history, we find the whole of this vast land brought together under the jurisdiction of one constitution and one union, which takes over responsibility for the welfare of more than 320 million men and women who inhabit it.
Dr. Prasad unfurled the Tiranga, India's national flag. He drove in his state coach and was greeted by thousands of people along the way. He also visited Rajghat and paid homage to Mahatma Gandhi.
In the early years, the celebrations were held in different places, at the Red Fort, the Irvine Stadium, and even in the Ramlila grounds. But from 1955, after the military parade began, the ceremony was shifted to Rajpath. It has remained there ever since.
Let us listen to glimpses of Republic Day celebration from the early 1950s.
Amid scenes of unforgettable splendor, Delhi celebrated the first anniversary of the Indian Republic. A huge concourse of people witnessed the President's ceremonial drive along Kingsway. The parade by the armed forces, at which Dr. Rajendra Prasad took the salute, was watched by a large and distinguished gathering. Earlier, the President presented 4 Padmavir Chakras for gallantry during the Jammu and Kashmir operation. After the presentation ceremony, units of the armed forces, headed by heavy tanks, marched past the saluting base. The smart turnout of the officers and men and their soldierly bearing won repeated applause from the jubilant crowd.
The Republic Day Parade is led by the 3 divisions of the Indian Armed Forces, Navy, Air Force and the Indian Army. Besides this, there are several cultural tableaux, rally of marching soldiers, military bands, aircraft shows and display of spectacular skill and daring on military vehicles. It is one of the most spectacular parades in the world. People from many parts of the world especially visit India during this time to witness the grandeur of the celebrations of the Republic Day in Delhi.
The festivities officially come to a close on January the 29th with the beating retreat ceremony in New Delhi, where bands from the Indian Army, Navy and the Air Force perform.
और कार्यक्रम में वक्त हुआ है उन महान व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं बापूजी अणे या लोकनायक अणे के नाम से विख्यात माधव श्रीहरि अणे को। आज उनकी पुण्यतिथि है। वो भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनके पिता एक विद्वान व्यक्ति थे। बापूजी अणे ने कोलकाता विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की और 1904 से 1907 ईस्वी तक अध्यापन का कार्य भी किया। फिर उन्होंने यवतमाल में वकालत आरंभ कर दी। माधव श्रीहरि अणे लोकमान्य तिलक से अत्यधिक प्रभावित थे। ये कुछ समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी रहे। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के समय इन्होंने भी जेल की सजा काटी थी। 1943 से 1947 तक ये श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त रहे और आजादी के बाद इन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया। युवक अणे पर लोकमान तिलक के मराठा और केसरी पत्रों का बड़ा प्रभाव पड़ा था। 1914 में जब तिलक जेल से छूटकर आए तो उनसे सबसे पहले मिलने वालों में अणे भी शामिल थे। तिलक के प्रभाव से भी राजनीति में भाग लेने लगे। उन्हें अपने जिले की कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। जब होम रूल लीग की स्थापना हुई तो उसके उपाध्यक्षों में अणे भी शामिल थे। 1921 से 1930 तक उन्होंने विदर्भ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता की और कुछ वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। स्वराज पार्टी की ओर से भी केंद्रीय असेंबली के सदस्य चुने गए और वहां अपने दल के मंत्री बने। उन्होंने नमक सत्याग्रह के समय जेल की यात्रा की थी।
Today is the death anniversary of Edward Jenner, the English physician and scientist who pioneered the concept of vaccines and created the smallpox vaccine, the world's first. The terms vaccine and vaccination are derived from variole, vaccinating, pustules of the cow, the term devised by Jenner to denote cowpox. In the West, Jenner is often called the father of immunology, and his work is said to have saved more than more lives than any other man. In Jenner's time, smallpox killed around 10% of the global population, with the number as high as 20% in towns and cities where infection spread more easily.
बिल्कुल, अपने विद्यार्थी जीवन काल में ही एडवर्ड जेनर ने कैप्टन कुक की समुद्री यात्रा से प्राप्त प्राणशास्त्री नमूनों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया था और शोध कार्य में लग गए थे। सन 1775 में उन्होंने सिद्ध किया कि गोम सूरी में दो विभिन्न प्रकार की बीमारियां सम्मिलित हैं, इनमें से केवल एक चेचक से रक्षा करती है। एडवर्ड जेनर ने यह भी सुनिश्चित किया कि गोम सूरी चेचक और घोड़े के पैर की ग्रीज नामक बीमारियां अनुषंगी हैं। 1798 में उन्होंने चेचक के टीके के कारणों और प्रभावों पर एक निबंध भी प्रकाशित किया। 1803 में चेचक के टीके के प्रसार के लिए रॉयल जेनेरियन संस्था की स्थापना हुई। एडवर्ड जेनर के कार्यों के उपलक्ष्य में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें एमडी की उपाधि से सम्मानित किया और 1822 में कुछ रोगों में कृत्रिम विस्फोटन का प्रभाव पर निबंध प्रकाशित किया और दूसरे वर्ष रॉयल सोसाइटी में पक्षी प्रवर्जन पर उन्होंने निबंध लिखा।
In the year 2002, Jenner was named in the BBC's list of 100 greatest Britons. Today is also the death anniversary of Raymond Henry Williams. He passed away on this day in 1988 and was a Welsh socialist writer, academic novelist and critical influential within the new left and in wider culture. His writings on politics, culture, the media and literature contributed to the Marxist critique of culture and the arts. Some 7,50,000 copies of his books were sold in UK editions alone, and there are many translations also. Williams was keen to establish the changing meanings of the vocabulary used in discussions of culture. He began with the word culture itself. His notes on 60 significant, often difficult words were to have appeared as an appendix to Culture and Society in 1958. The words include aesthetics, bourgeoisie, culture, hegemony, isms, organic, romantic, status, violence, and work. And today is the birth anniversary of Paul Leonard Newman, born on this day in 1925, the American actor, film director, racing car driver, philanthropist, and entrepreneur. He was the recipient of numerous awards, including an Academy Award, a BAFTA Award, 3 Golden Globe Awards, a Screen Actors Guild Award, and a Primetime Emmy Award, a Silver Bear and Cannes Film Festival Award, and the Jean Hersholt Humanitarian Award. He was born in Ohio, a suburb of Cleveland. Newman showed an interest in theatre as a child. At the age of 10, performed in a stage production of St. George and the Dragon at the Cleveland Playhouse. He received his Bachelor's of Arts degree in Drama and Economics from Kenyon College in 1949. He won the Academy Award for Best Actor for his performance in The Color of Money. His Oscar-nominated performances were A Cat on a Hot Tin Roof, The Hustler, Hud, Cool Hand Luke, Absence of Malice, The Verdict, Nobody's Fool, and Road to Perdition, to name a few.
और आज ही पुण्यतिथि है करतार सिंह दुग्गल की। उनका जन्म रावलपिंडी में हुआ था और उन्होंने लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में अंग्रेजी में एमए किया था। उन्होंने 1942 से 1966 तक आकाशवाणी में केंद्र निदेशक सहित विभिन्न पदों पर काम किया। इस दौरान उन्होंने आकाशवाणी के लिए पंजाबी सहित दूसरी भाषाओं में कई नाटक और कहानियां लिखी। 1966 से 73 में करतार सिंह दुग्गल नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक रहे और 1973 से 1976 तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय में बतौर सलाहकार उन्होंने अपनी सेवाएं दी।
एंड टुडे इज द बर्थडे ऑफ द अमेरिकन सिंगर Anita Denise Baker. She's known for her soulful ballads, particularly from the height of a quiet storm period in the 1980s. Starting her career in 1970s with the funk band Chapter 8, Baker released her first solo album, The Songstress, in 1983. In 86, she rose to fame following the release of her platinum-selling second album, Rapture, which included the Grammy-winning single, Sweet Love. I'm playing a song giving you the best that I got by Anita Baker.
Ain't there something I can give in exchange for everything you give to me? Read my mind, you make me feel just fine when I think my peace of mind is out of reach. The scales are sometimes unbalanced, and you bear the weight of all that has to be.
और भारत की प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी में से एक रानी गाइदिनल्यू की आज जयंती है। उन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए नागालैंड में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान ही वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए इन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है।
एंड टुडे इज आल्सो द बर्थडे ऑफ सी श्रीराम, द सिनेमेटोग्राफर एंड फिल्म डायरेक्टर हु वर्क्स इन इंडियन फिल्म्स, प्रेसिडेंट ऑफ क्यूब सिनेमास, अ डिजिटल सिनेमा टेक्नोलॉजी कंपनी। द फिल्म्स दैट ही हैज वर्कड ऑन इंक्लूड Monaragam, Nayakkan, Chinikam, Pa, Padman, and Ishq and Premu. A snippet of a song from Chinikam.
तो श्रोताओं, इसी के साथ समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो मुकेश कुमार और अनीता आनंद को परिक्रमा कार्यक्रम यही समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार।